الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا زدنا علما. تو آیت نمبر 5 ہم سورہ مائدہ کی اس کلاس کے اندر پڑھ رہے ہیں، معرف القرآن جلد نمبر 3 سے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں اور اس کے اوپر جو بھی بات کرتے ہیں اور آپ کے سوال ہوتے ہیں یا سارے اس کے سوال ہوتے ہیں تو اس کے جواب وغیرہ، اس طرح سے ہماری کلاس آگے چلتی ہے. اس آیت کی تفسیر میں ہم معرف و مسائل میں پڑھ رہے تھے صفحہ نمبر 60 کے اوپر، پیج نمبر 60، اور اس میں اس آیت کا تیسرا جملہ وہ ہم نے پڑھنا شروع کر دیا تھا. یعنی آیت کے اندر بھی جو چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں، طو سے جن کو کرتے ہیں الگ، یا زا سے یا صوت سے، تو اس طرح سے یہ تیسرا جملہ بنتا ہے کہ والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوت الکتاب من قبلکم، جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی، ٹھیک ہے، ان میں سے محصنات. تو محصنات من المؤمنات، مؤمنات کون ہیں؟ جو نبی علیہ السلام پر، اللہ کے آخری نبی ہونے کے طور پر ایمان لاتی ہیں، ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتی ہیں، اقرارم باللسان کرتی ہیں، زبان سے اقرار کرتی ہیں اور دل سے اس کی تصدیق کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، وہ تو مومنات ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد یہ بھی فرمایا الذین اوت الکتاب من قبلکم، پھر اذا آتیتموہن اجورہن محصنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان، ٹھیک ہے. اس کا ترجمہ کیا تھا کہ جب وہ تمہارے پاس آ جائیں یا نہیں، جب تم ان کو دے دو ان کے مہر، ٹھیک ہے، ان کے قید میں لانے کو، یعنی ان کو اپنے رشتہ ازدواج میں منسلک کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، نہ کہ مستی نکالنے کو، یعنی غیر مسافحین، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی آشنائی کرنے کو، یعنی نکاح جو ہے جس طرح سے کہ علن اعلان کیا جاتا ہے اس طرح سے نکاح کرنا. تو حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف و مسائل میں لکھتے ہیں اس آیت کے تحت یا اس آیت کے جملے کے تحت کہ یعنی تمہارے لیے مسلمان عفیف و پاک دامن عورتوں سے نکاح حلال ہے، اسی طرح اہل کتاب کی عفیف و پاک دامن عورتوں سے بھی نکاح حلال ہے، ٹھیک ہے. تو اب جو ہے عفیف و پاک دامن کی تحقیق لکھتے ہیں کہ یعنی محصنات کے لفظ کی تحقیق لکھتے ہیں کہ اس میں دونوں جگہ محصنات کا لفظ آیا ہے صوت کے ساتھ، احسان کا جو لفظ ہوتا ہے نا وہ سین کے ساتھ ہوتا ہے، تو یہ ہے صوت کے ساتھ. محسن محسن محسناتن محسناتن، ٹھیک ہے، تو یہ محسن کی یعنی صوت کے ساتھ محسن کی جمع ہے، جمع مؤنث محسنات. تو فرماتے ہیں کہ اس جس کے معنی عربی لغت و محاورے کے اعتبار سے دو ہو سکتے ہیں، ڈکشنری کے اعتبار سے بھی اور جو بول چال میں عربی استعمال ہوتی ہے اس کے اعتبار سے بھی دو ہو سکتے ہیں. لغت کا مطلب ڈکشنری اور محاورہ کا مطلب جو حوار کے لیے، بات چیت کے لیے جو عربی معاشرے میں استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یا کم از کم اس زمانے میں استعمال ہوتی تھی، تو اس کے اعتبار سے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک آزاد جس کا مقابل کنیزیں، ٹھیک ہے، تو ایک تو آزاد عورت مراد ہے اس سے، اور اس کو مزید اسٹیبلش کرنے کے لیے بھی بتا دیا کہ کنیز جو ہے نا وہ آزاد کے بالمقابل ہوتی ہے، یعنی مردوں میں غلام کہتے ہیں اور عورتوں میں کنیز کہا جاتا ہے. دوسرے عفیف و پاک دامن عورت، یعنی ایک تو آزاد ہو گیا اس کا معنی اور دوسرے عفیف و پاک دامن عورتیں، लुगत के अतबार से इस जगह भी दोनों मानी मुराद हो सकते हैं। इसीलिए उलमाए तफसीर में से मुजाहिद रहमतुल्लाह ने इस जगह मुहसनात की तफसीर हरायर से करी, जिसका हासिल ये हरायर यानी जो जो आजाद औरतें, जैसे हम कहते हैं ना हुर्रियत पसंद, ये तो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, हुर्रियत पसंद यानी इंडिपेंडेंस लवर्स। तो हरायर का जो लफ्ज है इसका मतलब होता है आजाद। तो इसका हासिल ये हुआ कि अहले किताब की आजाद औरतें मुसलमानों के लिए हलाल हैं, तमीजें हलाल नहीं, ठीक है, यानी जो गुलाम औरतें हैं वो हलाल नहीं है निकाह करने के लिए मुसलमान, ठीक है। गुलाम और कनीजें ये क्या चीज होती थी, तो अगर इसकी तफसील आपको सुननी है तो फिर आपको, और बहुत ज्यादा तफसील तो खैर नहीं करी थी, लेकिन इस सैटरडे को जो बच्चों की इसी सहाबा क्लास होती है तो उसके अंदर इस टॉपिक के ऊपर फिर काफी सारी बात कर ली थी दोबारा से, तो गुलाम और कनीजों का क्या सिलसिला होता है, तो वो आप उसकी रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा इंशाल्लाह, उसी से मिल जाएगी आपको अगर आप इस रुक पे खुद नहीं है तो। अच्छा, तो इस एतबार से कनीजें हलाल नहीं है, सिर्फ आजाद अहले किताब की औरतें हलाल के लिए। लेकिन जमहूर उलमा व सहाबा व ताबईन के नजदीक इस जगह मोहसनात के मानी खफीफ व पाकदामन औरतों के हैं, ठीक है। फिर वही बात के उलमा के नजदीक और उलमा की मेजोरिटी, जमहूर का मतलब मेजोरिटी होता है, सहाबा इस उम्मत के सबसे पहले उलमा थे, ठीक है। नबी अलैहिस्सलाम जो है ना वो मुअल्लिम थे, नबी अलैहिस्सलाम टेक्निकली स्पीकिंग उलमा में शुमार नहीं किए जाते बल्कि मुअल्लिम में, यानी उलमा के टीचर थे, सहाबा के टीचर थे, तो उम्मत के सबसे पहले उलमा के टीचर नबी अलैहिस्सलाम थे। फरमाया भी अना बुइस्तु इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिम, ये सिवाय इसके नहीं कि मुझे मुअल्लिम बना करके भेजा गया। तो उम्मत के उलमाए कराम की मेजोरिटी के नजदीक इस जगह मोसरात के मानी अफीफ व पाकदामन औरतों के, और मुराद आयत की ये है कि जिस तरह अफीफ और पाकदामन मुसलमान औरतों से निकाह जायज है, जायज परमिसिबल, ठीक है, वो रिकमेंडेड की बात नहीं कर रहे हैं, जायज की बात कर रहे हैं, कि जिस तरह वो जायज है इसी तरह अहले किताब की अफीफ व पाकदामन औरतों से भी जायज है, ठीक है। यानी अफीफ व पाकदामन, यहाँ पे कीवर्ड क्या बनता है, अफीफ और पाकदामन। इफ्फत कहते हैं हया पाकदामनी के लिए, इफ्फत का लफ्ज भी उर्दू जुबान में इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह उनके साथ भी जायज है। लेकिन अच्छा, ये अहकाम कुरान जसास और मजहरी, ठीक है, इन किताबों से इस हुक्म को आ सकते हैं यहाँ पे नकल फरमाया है। लेकिन बा इत्तेफाक जमहूर यानी मेजोरिटी उलमा का इत्तेफाक है इस बात पर कि इस जगह अफीफ व पाकदामन औरतों की कैद के ये मानी नहीं कि गैर अफीफ औरतों से निकाह ही हराम है, ठीक है, कि अगर आपने निकाह किसी गैर अफीफ औरत से कर लिया तो वो निकाह होगा ही नहीं, या निकाह करना जो है वो गुनाह कबीरा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, बल्कि इस कैद का फायदा बेहतर और मुनासिब सूरत की तरगीब है कि ख्वाह मुसलमान औरत से निकाह करो या अहले किताब से, बहर हाल यानी हर हाल में ये बात पेश नजर रहनी चाहिए कि पाक दामन अफीफ औरत से निकाह हो। बदकार फासिक औरतों से निकाह का रिश्ता जोड़ना किसी शरीफ मुसलमान का काम नहीं है, ठीक है। बदकार का मतलब होता है बुरे कामों में पड़ी हुई, और फासिक जो है वो कहते हैं खुले आम गुनाह का मुर्तकिब होने वाला या होने वाली, उसको फासिक कहा जाता है, ठीक है। बदकार तो उर्दू जुबान का एक लफ्ज है, या फारसी जुबान का भी, बदकार ये फारसी के अल्फाज हैं जो कि उर्दू में भी इस्तेमाल होने शुरू हो गए, और फासिक जो है ये अरबी के लफ्ज फिस्क से निकला, फासिक, ठीक है। तो फासिक की खास डेफिनेशन ये होती है कि जो कि गुनाह करता भी हो और सबके सामने करता हो, लोगों को दिखा के करता हो, छुपा के ना करता, ठीक है। तो अब अगर हम आपसे पूछें कि आप क्या समझते हैं कि बदकार और फासिक औरतें फिर कौन किस किस्म की औरतें होती हैं उनके? तो अगर आप बताएं, बदकार और फासिक, बुरा अमल करने वाली, और फासिक का मतलब क्या कि खुल करके गुनाह करने वाली, तो इससे आप क्या समझते हैं? जी माशाल्लाह, पहले ही जवाब दिया आपने। अच्छा, और बताएं, कोई कोई और कुछ और समझता है? लगता है खौफ छाया हुआ है इस वक्त, इसके ऊपर खौफ खौफ तो नहीं छाया हुआ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा डर के मारे। इतना मुश्किल सवाल पूछ लिया, या अगर खौफ है तो किस चीज का खौफ है? डांट का खौफ है। तो डांट का खौफ अगर है तो उसका बड़ा आसान सा हल यह है कि आप जो है ना वो एवरीवन करके जवाब ना दें, बल्कि जो है ना वो शायद इसका बारी नाम लिख करके, जो नाम होता है ना, क्या आया नाम लेना, तो पूरा नाम लिखा हुआ है, और उसको सेलेक्ट करके आप चैट विंडो पे लिखें, ठीक है? तो अगर डांट पड़ेगी ना तो किसी को पता नहीं चलेगा कि आपको डांट अगर पड़ी तो, ठीक है? नॉट नोइंग द रूल्स ऑफ हया एंड पाकदार, एक और आया, ऐलानिया गुनाह करने वाली, या ये तो ये मैंने खुद बताया था, फिर आपको वो बताया ना जो मैंने आपको नहीं बताया। तो बेदीन, ऐसे नहीं, खैर ठीक है, बेदीन समझ में आ गया, क्या बेदीन इतना है, बगैर झिझक से आदमी से इंटरेक्शन करने वाले, बगैर झिझक के आदमियों से इंटरेक्शन करने वाले। अच्छा, और क्या लिखा, फासिक में कोई भी खुला गुनाह करने वाली जिसमें पर्दा वगैरह की खुली खिलाफ वर्जी करना, ठीक है? तो बहरहाल जवाब आप सबके सही ही है तकरीबन, मतलब सही ही है, गलत तो फोर्स में बात नहीं है। तो असल में सवाल पूछने का मकसद क्या था? सवाल पूछने का मकसद ये था कि अब से कम कुछ अर्सा पहले तक तो कह सकते थे, ठीक है, जब तक जो है वो मुआशरे में बड़ी मेजर तब्दीलियां आई है ना हमारे मुआशरे के अंदर, पाकिस्तानी इंडियन मुआशरे में काफी सारी तब्दीलियां आई हैं पिछले 15 20 30 साल के अंदर, ठीक है? तो दो तब्दीलियां, वो क्या हैं कि एक तो मुआशरे का हिस्सा जो है ना वो बहुत ज्यादा दीनदार हो गया है, दीन की तरफ आ गया है, ठीक है? पहले ऐसा नहीं था, सही। और मुआशरे का दूसरा हिस्सा जो है ना वो बहुत ज्यादा यानी लिबरल साइड पे चला गया, ठीक है? जो कि पहले नहीं था, ठीक है, या पहले था तो बहुत ही तो पूछने का मकसद ये था कि आज से जो 20 25 साल पहले तक जब हम जरा नौजवानी की या जवानी की हालत में होते थे, तो उस वक्त जो है ना ये बदकार और फासिक औरत से क्या चीज मुराद दी जाती थी, जो कि नाच गाने वाली होती थी, ठीक है? डांसर का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता था, नाच गाने वाली औरत का लफ्ज भी इस्तेमाल किया जाता था, और जो है वो जिंदा वो जो कोठे वगैरह होते हैं उस तरह की, बहुत ही प्रोस्टिट्यूशन डेंस वगैरह जिनको कहते हैं, वो उन जगहों पे जो औरतें होती थी ना उनके लिए इस्तेमाल किया जाता, ठीक है? पर्दे का तो किसी को पता ही नहीं था कि ये क्या चीज होती है, ठीक है, सिवाय इसके के जो मदारिस में बैठ के दीन का इल्म हासिल कर रहे होते थे और पढ़ा रहे होते थे उनको पता था, या तबलीग जमात के लोगों को शायद पता हो, और इसके अलावा किसी को पता नहीं था ये पर्दा क्या चीज होती है, ठीक है? तो फिर बदकार फासिक औरत जो है वो सिर्फ गाने वालियों को और नाचने वालियों को कहा जाता था, ठीक है? ये था, ये हमारे मुआशरे में हम जहां से हम बिलोंग करते हैं वहां पर ये हाल था, ठीक है? अब जो है ना ये चीज चेंज ये इस तरह से हुई है
कि अब जो है अल्लाह ताला हमारे मशायख को, अकाबरीन को जजाए खैर अता फरमाए, कोशिश करते रहे, लगे रहे लगे रहे लगे रहे, मेहनतें करते रहे, हत्ता के अवाम के अंदर जो है वो इन बातों की भी अवेयरनेस आई कि अच्छा अल्लाह का हुक्म पर्दा होता है, ठीक है, और ये पर्दा जो है वो हर मुसलमान औरत के ऊपर फर्ज होता है, ठीक है। तो अब समझ में आया अल्हम्दुलिल्लाह हमें कि पर्दा ना करना जो है ना ये गुनाह होता है, और जो गुनाह खुल करके करे उसको फासिक कहा जाता है। तो अब ये सिर्फ डांसर के ऊपर ये लफ्ज अप्लाई नहीं होता, ये सिर्फ नाचने वाली और गाने वाली और कोठे पे जाने वाली के लिए अप्लाई नहीं होता, बल्कि ये लफ्ज तो हर खुलेआम गुनाह करने वाली पे अप्लाई होगा। जिस तरह मर्दों के बारे में हमारे मशाइख का क्या हमेशा से खुला ओपिनियन रहा है कि जो शेव करने वाला होता है, शेव करने वाला अपनी दाढ़ी को, वो फासिक होता है। क्यों फासिक होता है? क्योंकि जब वो दाढ़ी को शेव करता है ना, तो सारी दुनिया को नजर आ रहा होता है कि वो शेव कर रहा है, ठीक है, तो वो छुपा तो नहीं सकता ना अपने शेव वाले हरकत को, तो इस वजह से वो फासिक होता है मर्द। उसी तरीके से औरत का भी मामला यही होगा कि जो कि बेपर्दा औरत है, चाहे वो कितनी ही शरीफ घराने से ताल्लुक रखती हो, या जैसे भी, चाहे वो उसका डांसिंग से दूर दूर तक कोई ताल्लुक ना हो, लेकिन वो जो बेपर्दा घूम रही है, बाहर निकल रही है, तो क्या वो छुप रही है? भाई नहीं छुप रही, जब ही तो बेपर्दा है, ठीक है ना, नहीं छुप रही जब ही तो बेपर्दा है, तो ये औरत फिर फिस्क के अंदर आएगी, फासका के अंदर आएगी, ठीक है। सारी की सारी सियासत को साइड पे रख करके, पॉलिटिकली करेक्ट स्टेटमेंट्स को साइड पे रख करके, व्हाट इज द रियलिटी, ये जो भी बेपर्दा औरत होगी वो फासिक फासिका के अंदर आएगी, ठीक है। हाँ, तौबा करने के बाद अल्लाह ताला जो है वो उससे मोहब्बत करना शुरू हो जाएंगे, और वो अल्लाह ताला के कुर्ब का मुकाम पा लेगी, लेकिन तौबा करने के बाद पाएगी, उससे पहले नहीं पाएगी, ठीक है। तो फरमाते हैं कि बदकार फासिक औरतों से निकाह का रिश्ता जोड़ना किसी शरीफ मुसलमान का काम नहीं है, ठीक है। औरत तौबा कर लेगी, वो भी अल्लाह की महबूबा बन जाएगी, और मर्द तौबा कर लेगा, वो भी अल्लाह का महबूब बन जाएगा। अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दीन के अंदर बहुत बहुत ही वसत भी है, और बहुत ही जो है वो यानी नरमी भी है, लेकिन तौबा तौबा के साथ। तो ये चीज अहम है कि भाई हम अल्लाह के हुक्मों को जो है ना वो ऐसा ना समझे कि अपनी तरफ से डिफाइन किया हुआ है कि जिसको हम बुरा समझते हैं बस वो बुरा है, जिसको अल्लाह बुरा समझता हो वो बुरा नहीं है, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुरा कहा वो बुरा नहीं है, जिसको मैं या मेरा खानदान बुरा समझता है बस वो बुरा है, जैसे डांसर, ठीक है ना। अब जो है वो बहुत सारे ऐसे भी तमाशे आ गए हैं कि डांसिंग को भी जो है वो भी पता नहीं, कोई बुरका अबाया पहन के डांसर वाला वाला सिलसिला, जैसे पिछले दिनों कुछ बात भी हो रही थी इसके ऊपर। बहरहाल वो तो एक अजीब ही फिनोमेना है इस दौर का, लेकिन ये प्लेन एंड सिंपल यही है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारी जिंदगी भी काफी इसी चक्कर के अंदर जाया हुई कि हमने भी दीन का इल्म हासिल नहीं किया, और इस तरह से फिस्क और फुजूर के जो है वो शिकार रहे। अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमाई, तौबे की तौफीक अता फरमाई। इसलिए खुलासा मजमून इस जुमले का ये हुआ कि मुसलमान के लिए हलाल है कि किसी मुसलमान औरत से निकाह करे, या अहले किताब की औरत से निकाह करे, हलाल है, जायज है, परमिसिबल है। अलबत्ता दोनों सूरतों में इसका लिहाज रखना चाहिए कि अफीफ व पाकदामन औरत से निकाह, ठीक है, बदकार नाकाबिले एतबार औरत से निकाह का रिश्ता जोड़ना दीन और दुनिया दोनों की तबाही, इससे बचना चाहिए, ठीक है। अगेन यहां पर हम फिर वही अपना स्टाइल इस्तेमाल करेंगे, सेज हु, किसने कहा ये बात, ठीक है ना। तो ये जो अल्फाज लिखे हुए हैं उर्दू में लिखे हुए, वैसे भी तो ये जो है कुरान मजीद के अल्फाज तो नहीं है, ठीक है ना। मोहसनात का मतलब जो है वो तो हरायर भी हो सकता है, जैसे कि पीछे हमने पढ़ा, ठीक है। तो अब ये सेज हु का जवाब क्या होगा कि जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तकवा और इल्म से नवाजा है, दे आर द वंस हू से दिस, ठीक है। जैसे कि जब आपका बच्चा कोई नुकसानदह हरकत करने जाता है तो आप कहते हैं ना कि बेटा ऐसे नहीं, तो अब बेटा आगे से गए, अब्बू जी कुरान की आयत दिखाएं मुझे जिसकी बुनियाद पर आप मुझे मना कर रहे हैं, या नबी अलैहिस्सलाम की हदीस से मुतवातर दिखाएं जिससे जिसकी वजह से आप मुझे मना कर रहे हैं। अब्बू कहेंगे एक चमाट लगा करके तुम्हें मैं अभी बिठाता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मेरी उम्र तुमसे जो है वो कम से कम 20 साल, 25 साल, 40 साल ज्यादा है, मैंने दुनिया देखी है, मुझे पता है, मेरे पास इल्म है। ये दुनिया देखी है का मतलब क्या होता है कि मेरे पास इल्म है, और मैंने समझा है कि ये जो बात तुम करने जा रहे हो ना ये नुकसानदेह है तुम्हारे लिए, ठीक है। कुरान की दलील तुम्हें नहीं दे सकता मैं, ना तुम्हें हदीस मुतवातर लिखा सकता हूँ, लेकिन मेरा इल्म कहता है कि ये चीज़ नुकसानदेह। ठीक है, क्यों भाई, आप कौन होते हैं? भाई मैं बड़ा हूँ, मेरे पास इल्म है और मैं तुम्हारा खैर ख्वाह हूँ। ठीक है, यही उसूल जो है वो उलमाए उम्मत के ऊपर भी अप्लाई होता है, और ये भी अथॉरिटी अल्लाह ताला ने ही उलमाए उम्मत को दी है, अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्र। ठीक है, उनकी भी अताअत करो जो कि तुम्हारे दरमियान उलुल अम्र है, और उलुल अम्र से यहाँ पे मुराद अहले इल्म है। ठीक है, तो उनकी अताअत करने का डायरेक्ट ऊपर से हुक्म आया है। तो दे आर द वंस हू से दिस, कि नाकाबिले एतबार बदकार, नाकाबिले एतबार औरत से निकाह का रिश्ता जोड़ना दीनों दुनिया दोनों की तबाही है, इससे बचना चाहिए। हाँ, एक्सेप्शन कैन ऑलवेज बी देयर, आर ऑलवेज देयर एक्चुअली, कि भाई आपने ट्रक सड़क पे जा रहा था, तो आप जा रहे थे कि मैं ट्रक के सामने आ जाऊं, अल्लाह ताला मुझे बचा लेगा, तो देखने वाले ने कहा कि भाई नहीं, ऐसे नहीं होता यार, फास्ट मूविंग ट्रक के सामने नहीं जाओ, मर जाओगे। क्या नहीं, मैं जाऊंगा। ठीक है, और फिर हुआ क्या कि फास्ट मूविंग ट्रक जो है ना, उसने ब्रेकें लगाई और वो ठीक आपके आने से, आपके पुब तक पहुंचने से पहले पहले वो रुक गया, या उसका कुछ और मसला हो गया, टायर फट गया, वो जो है वो अपने रास्ते से खुद ही जो है वो डिरेल हो गया, तो आपकी जान बच गई। तो अब आप क्या कहेंगे, देखो मैं कहता नहीं था मैं बच जाऊंगा, आइंदा भी ऐसे ही करूंगा, मैं फास्ट मूविंग ट्रक के सामने जाके खड़ा होऊंगा, तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि नहीं मैं मर जाऊंगा। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाएगा, कहा भाई जाओ मरो जाकर के यार, तुम्हारी जो मर्जी है तुम करो जाकर के, मैंने तो तुम समझा समझाना था, मैंने समझा दिया, अब तुम्हारी मर्जी है, जो करना चाहो करो। ठीक है, तो यही मामला यहाँ पर भी है, कि जो समझ रखने वाले हैं, अकल वाले हैं, वो हमें अपने इल्म की रोशनी में, अपने तजुर्बे की रोशनी में, वो हमें बताते हैं कि ये चीज़ दुनिया दीन और दुनिया दोनों की तबाही है। हाँ ठीक है, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, हो सकता है आप और आपकी बेगम साहिबा दोनों बाद में तौबा कर लें, ठीक है, बट दैट्स एन एक्सेप्शन, दैट्स नॉट द रूल। ठीक है, जिस तरह आप दुनिया के अंदर गो बाय रूल्स नॉट बाय एक्सेप्शन, उसी तरह दीन के अंदर भी यू गो बाय रूल्स नॉट बाय एक्सेप्शंस, तो उससे बचना चाहिए। इस आयत में अहले किताब की कैद से बाय इजमाए उम्मत ये साबित हो गया कि जो गैर मुस्लिम अहले किताब में दाखिल नहीं है, उनकी औरतों से निकाह हलाल नहीं। ठीक है, तो ये काम, ये इल्म देना इसी को कहते हैं, कि अगले बंदे को समझा दिया जाए, बता दिया जाए कि भाई ये नुकसान वाली चीज है, ये आप ना करें, लेकिन करना ना करना ये उसके अपने इख्तियार में। ठीक है, ला इकराहा फिद दीन, आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कोई काम करने के लिए, या उसको आप रोक नहीं सकते कोई काम ना करने के लिए, अनलेस कि वो कोई बाकायदा पब्लिक लॉ, ठीक है, जो कि दीन की शक्ल में पब्लिक लॉ हो या दुनियावी तरफ से पब्लिक लॉ, उसको वायलेट करेगा तब सजा मिलेगी, वरना आप किसी को फोर्सफुली नहीं रोक सकते। ठीक है, लेकिन एजुकेट तो कर सकते हैं ना, एजुकेट करना तो बेयर मिनिमम काम है करने का। ठीक है, जिस तरह दुनिया के मामलों में एजुकेट करते हैं, उसी तरह दीन के मामलों में एजुकेट करते हैं। अच्छा, साबिता बयान में ये वाजह हो चुका कि इस जमाने में जितने फिरके और जमातें गैर मुस्लिमों की मौजूद हैं, उनमें सिर्फ यहूद और नसारा ही दो कौमें हैं जो अहले किताब में शुमार हो सकती है। ठीक है, सबका बयान से मुराद जो जबीहा वाला बयान था, उसमें ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ यहूद और नसारा ही अहले किताब में शुमार हो सकते हैं, बाकी मौजूदा मजाहिब में से कोई भी अहले किताब में दाखिल नहीं है। आतिश परस्त यानी पारसी जिनको आजकल कहते हैं, या बुत परस्त हिंदू, या सिख, आर्या, बुद्ध मत, बुद्धिस्ट जिनको कहते हैं वगैरह, सब इस उमूम में दाखिल है। ठीक है, यानी ये दे आर नन ऑफ देम आर अहले किताब। क्यों? क्योंकि ये बात बयान हो चुकी है कि अहले किताब से मुराद वो लोग हैं जो किसी ऐसी किताब के मानने वाले और उसके इत्तेबा के दावेदार हों, किताब के मानने वाले और इत्तेबा के दावेदार हों, दावा करते हों, जिसका आसमानी किताब और वही इलाही होना कुरान सुन्नत की नुसूस से साबित है, यानी कुरान से साबित है या हदीस मुबारक से साबित है कि वो अल्लाह ताला की नाजिल की हुई किताब है। तो अगर उसको मानने के दावेदार हैं तो बस वो अहले किताब है, अमल करना की बात नहीं कर रहे, मानने के दावेदार है, और जाहिर है कि वो तो तौरात और इंजील ही है, जिनकी मानने वाली कुछ कौमें इस वक्त दुनिया में मौजूद है। कुछ कौमों से मुराद ये है कि यहूद और नसारा दुनिया के अंदर मौजूद है। باقی زبور اور صحف ابراہیم علیہ السلام نہ کہیں محفوظ و موجود ہیں نہ کوئی قوم ان کے اتباع کی دعوے دار ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمیں معلوم تو ہے ان دو ناموں کی جو ہے وہ آسمانی کتابیں موجود ہیں، صحف ابراہیم اور زبور، لیکن کوئی قوم نظر نہیں آتی دنیا کے اندر جو کہ ان کے اوپر بلیف کرنے کی دعویٰ کرنے کا دعویٰ کرتے ہو۔ اور وید اور گرنتھ یا زردشت وغیرہ کتابیں جو دنیا میں مقدس کہی جاتی، یعنی کچھ قومیں کہیں کہتے ہیں ان کو مقدس، ان کی وحی الہی اور آسمانی کتاب ہونے کا کوئی ثبوت کسی شرعی دلیل سے نہیں ہے، یعنی قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے اور نہ اجماع امت اور قیاس سے موجود ہے۔ اور صرف یہ امکان کہ شاید زبور اور صحف ابراہیم ہی کی مسخ شدہ وہ صورت ہو جس کو بدھ مت کی کتاب یا وید یا گرنتھ وغیرہ کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے، یہ امکان محض اور احتمال محض، یعنی یہ محض ایک امکان ہے، یہ محض ایک احتمال ہے جو ثبوت کے لیے کافی نہیں ہے۔ جس طرح آپ کورٹ آف لا کے اندر خالی ایک پوسیبل، یعنی ایک پوسیبل چیز کو جو ہے وہ آپ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، امکان کو نہیں پیش کر سکتے، اسی طرح دین کے اندر بھی کوئی امکانی چیز کو آپ ثبوت کے طور پہ پیش نہیں کر سکتے، اس کے لیے ٹھوس دلیل چاہیے نا۔ تو اس لیے باجماع امت ثابت ہو گیا کہ موجودہ زمانے کے مختلف مذاہب میں سے صرف یہود و نصارہ کی عورتوں سے مسلمانوں کا نکاح حلال ہے، اور کسی قوم کی عورت سے جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائے نکاح حرام۔ ٹھیک ہے، اب یہ قرآن سے ثابت ہے کہ اجماع امت سے ثابت ہے؟ بھئی قرآن مجید کے اندر اہل کتاب کا لفظ آیا، جب شادی کی بات آئی تو اہل کتاب کا لفظ آیا، تو اہل کتاب کون ہے یہ تو قرآن مجید نے نہیں کہا، تو پھر یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوا کہ اہل کتاب کون ہے؟ اجماع سے، ٹھیک ہے، یعنی علماء نے تحقیق کری، چاروں طرف دیکھا، دنیا پہ نظر ڈالی، قوموں پہ نظر ڈالی، اور پتا چلا کہ بھائی صرف یہ بائبل اور اولڈ ٹیسٹمنٹ اور جو یعنی یہود و نصارہ کی کتابیں ہیں، بس یہی جو ہے نا قرآن و حدیث سے آسمانی کتابیں ثابت ہیں، اور ان کو ماننے والے صرف وہی ہیں جو کہ اپنے آپ کو یہودی اور عیسائی کہتے ہیں، تو اس وجہ سے صرف ان کی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، حلال ہے۔ ٹھیک ہے، تو دس از ویئر اجماع امت کیم ٹو پلے، ٹھیک ہے، یعنی ان دا ڈیفینیشن آف اہل کتاب اجماع امت یہاں پہ داخل ہوا۔ علماء نے حکم قرآن میں آیا، علماء نے امپلیمنٹیشن بتائی، حکم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا اور نبی علیہ السلام نے بتایا اور علماء نے سمجھایا، ٹھیک ہے، سمجھایا کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ امپلیمنٹیشن کرنا سمجھائے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آیت قرآن کریم، ولا تنکح المشرکات حتی یؤمن، اسی مضمون کے لیے آئی ہے، جس کے معنی یہ ہیں کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو، یعنی نبی علیہ السلام کے اوپر ایمان نہ لے آئے، اس وقت تک مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو، اور اہل کتاب کے سوا دوسری قومیں سب مشرکات میں داخل ہیں، ٹھیک ہے، یعنی لفظ مشرکات جو ہے نا وہ اصطلاح میں اہل کتاب کے علاوہ قوموں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اگرچہ کہ جو اہل کتاب ہیں وہ عملاً جو ہے وہ شرک کرتے ہیں، عملاً شرک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور وہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، تو یہ ان کا عمل جو ہے نا یہ عمل شرک ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو اصطلاحی طور پر مشرکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بت پرستوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے وہ میٹل کے بت بنائے چاہے وہ پتھر کے بت بنائے، ان بت پرستوں کے لیے مشرکات کا اور مشرکین کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، غرض قرآن مجید کی دو آیتیں اس مسئلے میں وارد ہوئی ہیں، ایک میں یہ ہے کہ مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح حلال نہیں جب تک کہ وہ مسلمان نہ ہو جائیں، لا تنکح المشرکات حتی یؤمن، دوسری یہ آیت سورہ مائدہ کی، جس سے معلوم ہوا کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح جائز، ٹھیک ہے، اسی لیے جمہور علماء صحابہ و تابعین نے دونوں آیتوں کا مدلول و مفہوم یہ قرار دیا उसूली तौर पर गैर मुस्लिम औरत से मुसलमान का निकाह ना होना चाहिए, उसूली तौर पर, ठीक है। इसको कहेंगे कयास, ठीक है। कि कयास क्या कहता है, लॉजिकल इन्फ्रेंस क्या कहती है, कि भाई हत्ता युमिन, ठीक है, तो गैर मुस्लिम औरत से जो कि ईमान नहीं लेकर के आई है, मुसलमान का निकाह नहीं होना चाहिए। लेकिन सूरह मायदा की इस आयत नंबर 5 ने कि अहले किताब की औरतों को इस उमूम से मुस्तस्ना कर एग्जेम्प्ट कर दिया, इसलिए यहूद और नसारा की औरतों के सिवा किसी दूसरी कौम की औरत से बगैर इस्लाम लाए हुए मुसलमान का निकाह नहीं हो सकता, ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि अहले किताब जो है वो भी ईमान वालों में दाखिल हो जाएंगे इस आयत की वजह से, क्योंकि उनकी औरतों से जो है वो निकाह जायज हो गया। तो इसका मतलब ये है कि कुरान मजीद की उस वाली आयत ला तनकहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना के मुताबिक अहले किताब जो है वो ईमान वाले डिक्लेयर हो गए, नहीं, बल्कि ये एक एग्जेम्पशन है या एक एक्सेप्शन है, ठीक है। अब रहा मसला अहले किताब यानी यहूद और नसारा की औरतों का, तो बाज़ सहाबा कराम के नजदीक ये भी जायज नहीं है, ठीक है। यानी अहले किताब की औरतों से निकाह भी जायज नहीं है। क्या मतलब भाई? तो इसका मतलब जो है ना, फिर वो अभी ये क्या कहते हैं, रिवायत पढ़ करके ही पता चलेगा, जो क्या काम कुरान से हजरत ने आप नकल की है, कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला का यही मजहब है। उनसे जब कोई पूछता तो वो फरमाते थे कि अल्लाह ताला का इरशाद कुरान करीम में वाज़ है, वला तनकहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, यानी मुशरिक औरतों से उस वक्त तक निकाह ना करो जब तक कि वो मुसलमान ना हो जाए। और मैं नहीं जानता कि इससे बड़ा कौन सा शिर्क होगा कि वो ईसा बिन मरियम या किसी दूसरे बंदे खुदा को अपना रब और खुदा करार दे, ठीक है। अब्दुल्ला बिन उमर जो है वो ये फरमाया करते थे, ठीक है, कि मैं नहीं जानता कि इससे बड़ा शिर्क कौन सा होगा कि वो ईसा इब्ने मरियम या किसी दूसरे बंदे खुदा को अपना रब और खुदा करार दे, ठीक है। अब अब्दुल्ला बिन उमर जो रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो ये जो बात फरमा रहे हैं, तो इसके ऊपर हमें कुरान मजीद से ही दलील भी मिलती है कि अल्लाह ताला जो है वो सूरह मरियम के अंदर फरमाते हैं ना कि वकाल उत्तखद और रहमान वलदा, तो ये लोग कहते हैं कि खुदाए रहमान की कोई औलाद है, यानी रहमान ने किसी को औलाद के तौर पे लिया हुआ है। लकद जे तुम शई अन इद्दा, हकीकत यह है कि तुमने बड़ी संगीन हरकत की है, ऐसी बात कहने वालों, ठीक है, अल्लाह ताला उनसे मुखातिब हो कहते हैं कि तुमने बड़ी संगीन शय अन इद्दा संगीन हरकत की है, तकादु समावात यतफत्तरन मिन्हु वतनशक्कुल अर्द वतखर्रुल जिबालु हद्दा, कुछ बعيد नहीं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े। अन दाउ लिर्रहमानी वलदा, कि इन लोगों ने खुदाए रहमान के लिए औलाद होने का दावा किया होता है, ठीक है। कैसे क्या फरमा रहे हैं कि इसकी वजह से आसमान फट पड़े, जमीन शक हो जाए और पहाड़ टूट कर गिर पड़े, ठीक है। यानी इसकी इंटेंसिटी को जो है वो डिस्क्राइब अल्लाह ताला ऐसे अल्फाज से करते हैं, ठीक है। तो अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु जो है, एक तो ये कि उनकी पोजिशन क्या थी, वो सहाबी रसूल थे और बहुत इल्म वाले सहाबी रसूल, ठीक है। यानी ऐसे नहीं कि बस किसी गजबे में जो है वो सहाबी बने और जो है वो शहीद हो गए, इल्म हासिल करने का उनको मौका नहीं मिला। अल्लाह ताला ने उनको खूब मौका दिया इल्म हासिल करने का, खूब सुन्नतों का इल्म हासिल किया, कुरान का इल्म हासिल किया। तो एक तो इल्म के अंदर उनका मुकाम, सहाबा होने के तौर पर उनका मुकाम, और फिर दलील भी कुरान मजीद से ही, ठीक है, कुरान मजीद से ही दलील दे रहा है कि भाई इससे ज्यादा ज्यादा बुरी और क्या बात होगी। एक मरतबा मैमून बिन मेहरान ने हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने सवाल किया कि हम एक ऐसे मुल्क में आबाद हैं जहां अहले किताब ज्यादा रहते हैं। जब मुसलमानों की एक्सपेंशन हुई थी तो शाम की तरफ जब एक्सपेंशन हुई तो वहां पर भी अहले किताब ईसाई जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, मेजोरिटी तो ईसाइयों की थी, वो तो बाद में जाकर के लोग मुसलमान हुए ना, तो क्या हम उनकी औरतों से निकाह कर सकते हैं और उनका जबीहा खा सकते हैं? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनको जवाब में ये दोनों आयतें पढ़कर सुना दी, एक वो जिसमें मुशरिकात के निकाह को हराम फरमाया है, दूसरे ये आयत मायदा के जिसमें अहले किताब की औरतों की हिल्लत बयान की है, ठीक है। तो दो बातें इसमें नजर आती हैं, एक तो यही कि अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जो है वो इस बात के हक में नहीं थे कि अहले किताब की औरतों से जो है ना वो शादी की जाए, वो ये बात क्यों कहते थे? कुरान की खिलाफ वर्जी करने के लिए नहीं, ठीक है, बल्कि वही बात के जो इल्म वाले होते हैं, तजुर्बे वाले होते हैं, वो इसके नुकसानात को देख रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने इजाजत जरूर दी है, लेकिन हुक्म तो नहीं दिया ना कि जाओ जाकर के अहले किताब की औरतों से शादी करो। बेचारी जो है वो गैर शादीशुदा बैठी हुई है, कौन उनका घर बसाएगा, और कौन उनके जो है वो आंसू पोछेगा, और कौन उनको जो है वो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है अहले किताब की औरतों से जाकर शादी करो। भाई इजाजत दी है, ठीक है, तो इब्न उमर अतान जो है वो उसको उसी हद तक ही रखना चाहते थे कि इजाजत दी है, हुक्म को थोड़ी दिया है। तलाक की इजाजत नहीं दी, तलाक की भी तो इजाजत दी है ना, लेकिन क्या हुक्म भी है? हाँ भाई तलाक दे दो, जाकर के जाके तलाक दे दो, और लेफ्ट एंड राइट लोगों को तलाक दो, नहीं, बल्कि मबूस चीज है ना तलाक, ठीक है। और ना सिर्फ ये कि नबी अल्लाह ताला ने उसको फरमाया कि अल्लाह ताला के नजदीक जायज चीजों में सबसे ज्यादा मबूस चीज जो है वो तलाक देना है, ठीक है, बल्कि इवन मुआशरती एतबार से भी, और दूसरी भी बहुत सारी रीजन होती है कि जिसकी वजह से तलाक जो है वो कोई पसंदीदा चीज नहीं समझी जाती, घर टूट जाता है, नस्लें बर्बाद हो जाती हैं, और क्या क्या मुश्किल हो जाती हैं, ठीक है, लेकिन है जायज। तो अब है जायज तो उसका मतलब है कि हाँ भाई मैं इनको भी दूंगा, मैं उनको भी दूंगा, उनको भी दूंगा, उनको भी दूंगा, है, फिर उसके बाद नई नई शादियां करता फिरूंगा, नहीं। तो भाई इसी तरीके से यहाँ पर भी तो शादी करने की इजाजत है ना, ये कोई थोड़ी कहा जाओ जाकर के तुम शादी करो, क्यों नहीं करते जाके शादी, ठीक है। तो और भी बहुत सारी इस तरह की चीजें शरीयत के अंदर जो कि जायज हैं। सतर, सतर जो है वो मुसलमान औरत का, मुसलमान औरत के सामने जो सतर है ना, वो ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा जो है वो आप लिबास पहन करके, लेकिन क्या इस तरह से खोल करके वो कोई बैठता है? नहीं, कि भाई सीना जो है वो सतर में नहीं आता, तो आप सीना खोल के बैठा है, बैठी हुई है कोई औरत? हरगिज नहीं भाई, वो एक्सेप्शनल सिचुएशंस के लिए, स्पेशली जो है वो फील कराने के लिए, या कोई ऐसी सिचुएशन हो कि जिसके अंदर जो है वो मुसलमान औरत के लिए जो सतर है उस हद तक खोला जा सकता है, ठीक है, या महरम रिश्तेदार के सामने भी, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये कि थोड़ी है कि आप लेफ्ट एंड राइट जो है वो ऐसे ही रहा करें घर के अंदर, ठीक है, जो रहेगा तो फिर उसको ये कहा जाएगा ना आप जो है वो शरीयत की किसी इजाजत को अब्यूज कर रहे हैं। ये अब्यूज करने के लिए नहीं आई थी, ये तो यूज के लिए आई थी, अंडर डिस्ट्रेसफुल कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए जिसके अंदर क्या आप, ठीक है, इसकी गुंजाइश शरीयत ने रखी है, लेकिन यू कैंट मेक इट अ नॉर्म, यू शुडंट मेक इट अ नॉर्म ना, एंड नो वन मेक्स इट अ नॉर्म आइदर। तो यही मामला जो है वो अहले किताब की औरतों के साथ भी है। तो अब्दुल्ला इब्ने मरदान सारी गहराइयों को समझते थे, ठीक है, इस वजह से वो डिस्करेजिंग जवाब देते थे। और आगे मजीद भी है इसी के ऊपर कि मैमून बिन मेहरान ने कहा कि ये दोनों आए थे तो मैं भी कुरान में पढ़ता हूँ। अच्छा दूसरी बात ये कहनी थी कि भाई ये भी तो मुसलमान थे, ठीक है, सहाबी नहीं थे, मैमून बिन मेहरान मुसलमान भी थे, अरबी जुबान भी समझने वाले थे, लेकिन पूछ रहे हैं अपने से ज्यादा इल्म वाले से, सवाल कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, ठीक है, अपने इल्म पे नाजा कि नहीं मुझे भी अरबी आती है और मैं भी जो है वो कुरान पढ़ता हूँ, और तो मुझे पूछने की क्या जरूरत है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो फरमाते हैं कि मेरा सवाल तो ये है कि इन दोनों के पेश नजर मेरे लिए हुक्म शरी क्या है? अजीब है, जैसे कि एक शेर के साथ ताल्लुक होता है ना, पर्सनल लेवल, भाई ठीक है हुक्म शरी तो ये है, लेकिन शुड आई डू इट और शुड आई अवॉइड डू इट, ठीक है। तो उसके जवाब में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अता ने फिर यही दोनों आयतें पढ़कर सुना दी और अपनी तरफ से कुछ नहीं फरमाया, जिसका मतलब उलमाए उम्मत ने यह करार दिया कि हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर अतान को अहले किताब की औरतों से निकाह हलाल होने पर भी इत्मीनान नहीं था, यानी इत्मीनान नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, कुरान पे इत्मीनान नहीं था, नाउज़ुबिल्लाह, सुम्मा नाउज़ुबिल्लाह, अब्दुल्ला इब्ने उमर अतान को नहीं, हरगिज़ इसका यह मतलब नहीं है कि कुरान पर इत्मीनान नहीं, बल्कि इस बात पर इत्मीनान नहीं था दैट मुस्लिम शुड स्टार्ट मेकिंग इट इन नॉर्म, ठीक है। तो डिस्करेज ही करते थे, जैसे तलाक के लिए डिस्करेज किया जाता है ना, हालांकि वो अल्लाह ताला ने जायज करार दिए, ठीक है, उसी तरीके से इसके ऊपर भी डिस्करेज किया करते थे, ठीक है, कि इसका यानी एक करेंगे दूसरा भी करेगा फिर तीसरा भी करेगा, और जाहिर है फिर तकलीद जो साहिब तकलीद होगा तो उनकी तकलीद की जाती है, ठीक है, तो फिर ये नॉर्म बन जाएगा, अभी नॉर्म नहीं है ना, कल को बन जाएगा ये नॉर्म। तो जमहूर सहाबा ताबीन के नजदीक अगरचे अजरूए कुरान अहले किताब की औरतों से फी नफ्स ही निकाह हलाल है, लेकिन उनसे निकाह करने पर जो दूसरे मफासिद और खराबियां अपने लिए और अपनी औलाद के लिए बल्कि पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए अजरूए तजुर्बा लाजमी तौर से पैदा हो, यानी तजुर्बे को देख करके, जो बड़ों ने, बड़ों के पास ही तजुर्बा होता है ना, छोटे बच्चे के पास तो तजुर्बा नहीं होता ना, ठीक है, तो उससे ये चीज साबित होती है कि सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं, सिर्फ अपनी नस्ल के लिए नहीं, बल्कि पूरी उम्मत इस्लामिया के लिए जो है ये मसले पैदा होते हैं। तो उनकी बिना पर अहले किताब की औरतों से निकाह को वो भी मकरूह समझते थे। जसास ने अहकामुल कुरान में शकीक बिन सलमा की रिवायत से नकल किया है कि हजरत कुजैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला जब मदाइन पहुंचे तो वहां एक यहूदी औरत से निकाह कर लिया। हजरत कुजैफा बिन यमान रज़ी अल्लाह तआला, ये तो सहाबी रसूल है ना, हजरत फारूक आजम रज़ी अल्लाह को इसकी इत्तला मिली तो उनको खत लिखा कि उसको तलाक कर दे। हजरत हुजैफा रज़ी अल्लाह ने जवाब में लिखा कि क्या वो मेरे लिए हराम है, तो फिर अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने जवाब में तहरीर फरमाया कि मैं हराम नहीं कहता, लेकिन उन लोगों की औरतों में आम तौर पर इफ्फत पाक दामनी नहीं है। उमर फारूक खतान जो है वो आलिमुल गैब भी नहीं थे कि मदीना मुनव्वरा बैठ करके उनको सब नजर आ रहा था कि ये औरत कैसी औरत है, नहीं, आलिमुल गैब नहीं थे और इन्होंने इन इस औरत को देखा भी नहीं था, लेकिन जो इसके मफासिद और फसाद इनके इल्म में थे और जो अल्लाह ताला ने उनको साहिबैन में से एक होने का जो है वो रुतबा अता फरमाया था और अमीर उल मोमिनीन का मकाम अता फरमाया था, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी समझी कि यहीं पे इसको जो है ना वो कर्ब किया जाए। तो फरमाते हैं कि इसीलिए मुझे खतरा है कि आप लोगों के घराने में इस राह से फहश व बदकारी दाखिल ना हो जाए, क्योंकि वहां की जो औरतें होती हैं वो ऐसी औरतें होती हैं। और इमाम मोहम्मद बिन हसन रहमतुल्लाह ने किताब अल आसान में इस वाक़े को बरवायत इमाम इब्न हनीफा रहमतुल्लाह ने इस तरह नकल किया है कि दूसरी मरतबा फारूक आजम रहमतुल्लाह ने जब हजरत हुज़ैफ़ा रहमतुल्लाह को खत लिखा तो उसके ये अल्फाज, यानी मैं आपको कसम देता हूं कि मेरा ये खत अपने हाथ से रखने से पहले ही उसको तलाक देकर आजाद कर दो, क्योंकि मुझे ये खतरा है कि दूसरे मुसलमान भी आपकी इक्तदा करेंगे और अहले जिम्मा अहले किताब की औरतों को उनके अहले जिम्मा अहले किताब की औरतें, ठीक है, यानी ये ईसाई लोग जो थे मुसलमान फतह कर चुके थे, अब ये लोग जो है वो जिजिया टैक्स अदा करते थे मुसलमान, तो ऐसे लोग अहले जिम्मा कहलाते हैं, मुसलमानों की जिम्मेदारी में आते हैं कि उनकी जान व माल की हिफाजत की जाए उस टैक्स के बदले में, ठीक है, तो अहले जिम्मा अहले किताब की औरतों को ना फिर लोग उनके हुस्नो जमाल की वजह से मुसलमान औरतों पर तरजीह देने लगेंगे, तो मुसलमान औरतों के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या हो, ठीक है, यानी ये लोग जो थे मदियन के रहने वाले हों या आगे शाम के रहने वाले हों, ये बेसिकली यूरोप और एशिया का एक मिक्सचर होता है और इनकी औरतें बहुत हसीन होती हैं, अरब के अंदर कुछ औरतें हसीन होती हैं कुछ नहीं होती, जैसे हमारे यहाँ माशाल्लाह है मिक्सचर होता है हर किस्म का, लेकिन यूरोप के अंदर जो है वो मामला ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला ने नस्ल बनाई है, अब इस तरह की आजमाइश है भाई, ठीक है, तो अगर ये शुरू कर दिया ना आपने तो फिर तो मुसलमान होता तो कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो इतनी हसीनों की जमील जो है वो सारी की सारी नहीं होती, एकाध होती है। इस वाक्य को नकल करके हजरत मोहम्मद बिन हसन ने फरमाया कि फुकहाए हनफिया इसी को इख्तियार करते हैं कि इस निकाह को हराम तो नहीं कहते लेकिन दूसरे मफासिद और खराबियों की वजह से उसको मकरूह समझते हैं, और अल्लामा इब्ने हम्माम ने फतहुल कदीर में नकल किया है कि हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा तलहा और काब बिन मालिक को भी ऐसा ही वाक़ पेश आया कि उन्होंने आयत माईदा की बिना पर, यानी इसी आयत नंबर 5 सूरह माईदा की बिना पर अहले किताब की औरतों से निकाह कर लिया, तो जब फारूक आज़म रज़ी अल्लाह इसकी इत्तला मिली तो सख्त नाराज हुए और उनको हुक्म दिया कि तलाक दे दें, ठीक है, फारूक आजम रतान का जमाना खैरुल कुरून का जमाना है जब इसका कोई एहतमाल नहीं था कि कोई यहूदी नसरानी औरत किसी मुसलमान की बीवी बनकर इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ कोई साजिश कर सके, इतने स्ट्रांग थे मुसलमान ईमानी एतबार से भी और मटेरियली भी इतने स्ट्रांग थे, उस वक्त तो सिर्फ ये खतरात सामने थे कि कहीं उनमें बदकारी हो तो उनकी वजह से हमारे घराने गंदे ना हो जाए, ठीक है, कि बदकारी का जो है मामला हमारे घरानों के अंदर ना आ जाए, या उनके हुस्न जमाल की वजह से लोग उनको तरजीह देने लगे, दूसरा खौफ ये था कि लोग उनको तरजीह देने लगे तो मुसलमान औरतों से कौन शादी करेगा, ठीक है, जिसका नतीजा ये हो कि मुसलमान औरतें तकलीफ में पड़ जाएं तो उनको शादी करने वाला कोई ना मिले, मगर फारूकी नजर दूरबीन दूर तक देखने वाली नजर इतने ही मफासिद को सामने रखकर, यानी इन्हीं दो मफासिद को सामने रखकर उन हजरात को तलाक पर मजबूर करती है, अगर आज का नक्शा उन हजरात के सामने होता तो अंदाजा कीजिए कि उनको उनका इसके मुताबिक क्या आमद। ठीक है, तो अब ये तो सारी की सारी अकल की बुनियाद पर आप कंक्लूजन निकालेंगे ना। ठीक है, लेकिन जो इसकी बेस है वो कुरान और हदीस और आसार सहाबा है, सहाबा का अमल। ठीक है, तो अकल जो है वो इस्तेमाल करनी है, लेकिन उसकी जो बुनियाद है या उसकी जो लिमिट्स हैं वो शरीयत की उसके उसूल होने जरूरी है। अकल शरीयत के उसूलों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करनी है, लेकिन शरीयत के उसूलों के तहत इस्तेमाल करनी है। तो इस तरीके से फिर मना किया गया। अव्वल तो वो लोग जो आज अपने नाम के साथ मर्दुम शुमारी के रजिस्टरों में यहूदी या नसरानी लिखवाते हैं, यानी वही बात पहले हो चुकी है कि दे आर जस्ट नोन एज क्रिश्चियन, लेकिन वो बिल्कुल बाइबल के ऊपर बिलीव नहीं करते। तो उनमें से बहुत से वो लोग हैं जो अपने अकीदे की रूह से यहूदियत और नसरानियत को एक लानत समझते। ठीक है, यानी नॉन कंजर्वेटिव्स अमेरिका के अंदर देख रहे हैं या यूरोप में जो है वो बहुत बड़ी तादाद में, फ्रांस जो है वो तकरीबन पूरा का पूरा ही जो है वो एंटी रिलीजियस कहलाता है। तो ना उनका तौरात तो इंजील पर अकीदा है, ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम पर। वो अकीदे के अतबार से बिल्कुल लामजहब और दहरी, महज कौमी या रस्मी तौर पर अपने आप को यहूदी और नसरानी कहते हैं। ठीक है ना, यानी अब तो वो भी नहीं कहते, वो तो कहते हैं बस मेरा नाम तो बस लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैं जॉर्ज हूँ या जॉर्जिया हूँ या जो भी हूँ। ठीक है, लेकिन आई डोंट बिलीव इन गॉड, आई डोंट बिलीव इन जीसस, आई डोंट बिलीव इन एनीथिंग। जाहिर है कि उन लोगों की औरतें मुसलमानों के लिए किसी तरह से हलाल नहीं, और बिलफर्ज अगर वो अपने मजहब के पाबंद भी हों तो उनको किसी मुसलमान घराने में जगह देना अपने पूरे खानदान के लिए दीनी और दुनियावी तबाही को दावत देना है। इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ जो साजिशें इस राह से इस आखिरी दौर में हुई और होती रहती हैं, जिनके इबरतनामे रोज आंखों के सामने आते हैं कि एक लड़की ने पूरी मुस्लिम कौम और सल्तनत को तबाह कर दिया, ये ऐसी चीजें हैं कि हलाल और हराम से कतअ नजर भी कोई जी होश इंसान उसके करीब जाने के लिए तैयार नहीं हो सकता। खुसूसन मशहूर है या किताबों में लिखा हुआ है कि सल्तनत उस्मानिया में इसी किस्म की हरकतें शुरू हुई थी, जिसके बाद जो है ना फिर सल्तनत उस्मानिया को ऐसे जो है फिर ईसाइयों ने अपने हाथ में लेकर के बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। इसको ये भी कह सकते हैं कि इन हजरात खासकर को मिजाज शरीयत पता थी। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही है, मिजाज शरीयत। एक होता है कि आपको शरीयत के जो है ना वो डूज एंड डोंट्स का पता हो, और एक होता है कि आपको शरीयत के जो है ना मकासिद का पता हो। ठीक है, शरीयत के डूज एंड डोंट्स के बारे में कुदरतन कल ही कुछ साथियों के साथ बात हो रही थी, आप लोग शायद मौजूद नहीं है यहाँ पे, कि ये डूज एंड डोंट्स के बहाने जो है ना वो मकासिद शरिया को ताख तो ताराज कर देना, ये हरगिज इसकी इजाजत नहीं है। लेकिन जो करना चाहते हैं आज के दौर में तो बहुत ज्यादा हो रहा है, ये शरिया कंप्लाइंट है, ये फलानी बात शरिया कंप्लाइंट है, लेकिन शरिया कंप्लाइंट के नाम पर क्या क्या जो है वो दीन को नुकसान पहुंचा करके नक्शे इस वक्त इस्तेमाल किए जा रहे हैं। उसी तरीके से ये भी मामला कि भाई अहले किताब की औरत के साथ शरिया कंप्लाइंट निकाह किया है भाई, ठीक है, लेकिन उसके बाद जो हशर हुआ है कि पूरी पूरी जो है ना वो सल्तनतें जो है वो बेड़ा खराब हो गया उनका। अलगर्ज कुरान सुन्नत और उस्वाए सहाबा की रूह से मुसलमानों पर लाजिम है कि आजकल की किताबी औरतों को निकाह मिलाने से कुल्ली परहेज करें, कुल्ली तौर पर परहेज करें। आखिर आयत में ये हिदायत भी दी गई है कि अहले किताब की औरतों को अगर रखना ही है तो बाकायदा निकाह करके बीवी की हैसियत से रखें, उनके हुकूक महर वगैरह अदा करें, उनको दाश्ता के तौर पर रखना और खुले तौर पर बदकारी करना, ये सब चीजें हराम है। ठीक है, तो इसकी एक जो है ना वो आज के दौर में भी इम्प्लीमेंटेशन क्या नजर आती है, आज के दौर से मुराद ये कि 20वीं सदी के अंदर फॉर एग्जाम्पल, कि कोई जो है वो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में किसी ऐसे ईसाई मुल्क के अंदर पहुंच गया किसी तरीके से। ठीक है, अच्छा तो वो कोई ऐसी जगह पे पहुंच गया है, अब उसके लिए मुमकिन ही नहीं हो रहा कि वो वापस अपने मुल्कों में आए, कोई मुसलमान खानदान को करीब में रहते ही नहीं है, और जो है वो शादी के कोई मुसलमान के साथ उसका कोई चारा ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है शादी में, यानी कोई मुमकिन ही नहीं नजर आ रहा। तो अब वो शख्स जो है वो क्या करे, गैर शादीशुदा जिंदगी गुजारे और हराम में का मुर्तकिब हो, या जो है वो वहां पर अगर कोई ईसाई या यहूदी दो तौरात और इंजील के ऊपर यानी बिलीव करती हो तो उससे निकाह कर ले। ठीक है, इस सूरत के अंदर उसको हराम से और गुनाह से और बुरी जिंदगी से बचाने के लिए ये एक रास्ता अल्लाह ताला ने खोल के रखा है, ठीक है। लेकिन मुसलमान औरत को छोड़ करके अहले किताब से शादी कर रहा है, या जो है वो ज्यादा खूबसूरत है इस वजह से उससे शादी कर रहा है, या जो है वो और अपने कोई दोस्तों को बताने के लिए कहा भी मैंने गोरी से शादी करी है, तो फिर ये चीज उसके लिए बर्बादी का ही सबब बनेगी। और जाहिर अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन किस वजह से कौन सा वाला काम कर, उसके साथ जो है उसका वही मामला होता है। अल जजा मिन जिन्सिल अमल, जैसा अमल होता है ना उसी तरह की ही जजा अल्लाह ताला उसको अता करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला बात समझ होगी तो फिर खुदा फरमाए व आखिर दुआ अल्हम्दुलिल्लाह आमीन। बादों के साथ हमने 10 मिनट आपके एक्स्ट्रा लिए।